आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्री हूँ, मैं दास हूँ, इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है, तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरी आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रियादिक जो दृश्य है उनसे मिलकर अपने को ये जानना कि मैं हूं, यही अज्ञान निद्रा है।
शरीर और इंद्रिय वाले शरीर को मैं मानना, यही अज्ञान है। और मन में जो वासना है वो मेरी पूरी हो इच्छा तो मैं सुखी हूं, ये अज्ञान का भाव है। कई वासनाएं आई, पूरी होगी तो क्या हो गया? तो जो होना है होते हैं, नहीं होता है नहीं होता है, चलता रहता। वासना पूर्ति का सुख बंधन करता है। शरीर को मैं मानना यह अज्ञान है, वस्तुओं को मेरा मानना यह अज्ञान को पोषण देने वाला है। आत्मा को मैं मानना, परमात्मा आत्मा एक स्वरूप है, विभू है, व्याप्त है, तो यह अज्ञान को चीर कर, जैसे बादलों को चीर के सूर्य प्रकाशित होता है अंधकार में, ऐसी बहुत ऊंची चीज, बहुत ऊंची आत्मा प्राप्ति, बाप रे बाप। उसके बिना दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि कपट चालू है ना, कपट दुख को बढ़ाता है, दुख को मिटाता नहीं। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण वा भक्त की लगी किनारे ना, ऐसा आत्मपद है। हाँ जी।
जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं देख पड़ती, और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तृण से ढकी है।
देख लो, जैसे मणि तिनखों से ढकी है तो नहीं दिखती, तिनके हटाइए तो दिखती है, ऐसे आत्मरूपी मणि वासनाओं के तिनखों से ढकी है। वही वासना झूठा बेईमान कपटी अपने दोषों को ढकने की कला वही वासना सिखाती। जो दोषों को ढकता है समझो उसका भविष्य अंधकार में है। अपनी गलती में सफाई देके गलती से बचना चाहता है, समझ लो उसको लंबे समय तक इस पाप कूप में रहना है, जन्म मरण में माँ के गर्भ में रहना है।
हे राजन, एक उपाय तुझसे कहता हूँ, उसे कर जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है उसका त्याग कर, फिर जहां इच्छा हो वहां विचर।
मैं मेरे शरीर को मैं मानना और अपनी इच्छा के अनुसार सुखी होने की कोशिश, ये दो छोड़ दे। जहां जाएगा ब्रह्म है, जहां चाहे विचरो, रोजी रोटी खाना सब मौज ही मौज, इतना जरा सा है, लेकिन इसी में कईयों की गति नहीं होती। आदत पुरानी है ना, शरीर को मैं मानना और संसार को सच्चा मानना, ये गंदी वासना की आदत विचारों को मार लेती। इतने नीच नहीं है कि गुरु के पास भी नहीं आ सके या बैठ सके। कुछ तो है पुण्य, लेकिन वो वासना पुरानी। अगर नीच होते तो गुरु के आगे बैठ भी नहीं सकते। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य स्वल्प होते हैं उनको तो भगवान गुरु शास्त्र में विश्वास नहीं होता। तो एकदम नीच भी नहीं है और एकदम सच्चे उत्तम जिज्ञासु भी नहीं।
फिर तुझे दुख का स्पर्श न होगा।
ऐसा करोगे तो दुख का स्पर्श नहीं होगा। शरीर में अहम और वासना की पूर्ति ये छोड़ दो तो फिर दुख कभी होगा ही नहीं। जब तक दुख होता है तो समझ लो कि ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो दुख नहीं होता। जैसा अमृत तैसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष और शोक भी नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति की तक क्या महिमा बताओ। ईश्वर प्राप्ति की महिमा कोई पूरी गा भी नहीं सकता। ईश्वर की महिमा भी नहीं गा सकता तो ईश्वर प्राप्त महापुरुष को भी पूरा नहीं गा सकता। ऐसी ईश्वर तो फिर मन चाहा ईश्वर तो कोई भी मान लेगा, लेकिन वास्तविक में जो सबका अंतर आत्मा है, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, ये मंडलेश्वर है, ये फलाना है, सारे ईश्वरों का जो ईश्वर है वो आत्मदेव है। ब्रह्मा का जो ईश्वर है, विष्णु का जो ईश्वर है, शिव का जो ईश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वही तुम्हारा हमारा सबका ईश्वर है। और उससे एक सेकंड का हजारवां हिस्सा हम अलग नहीं हो सकते। आधी सेकंड तो क्या कहो, और आज तक मिला नहीं। वासना की बलिहारी, अज्ञान की बलिहारी, इंद्रिय लोलुपता की बलिहारी, देह को मैं मानने का ज्ञान है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। देह होते हुए भी देहातीत, शरीर होते हुए भी शरीरातीत, चिदानंदमय देह, ऐसा साक्षात्कार महापुरुषों का। तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना किससे कर। राजा इक्ष्वाकु, भगवान राम इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए। राजा इक्ष्वाकु मनु महाराज के भक्त थे। मनु महाराज का ध्यान किया तो मनु महाराज आ गए उनके पास। तो राजा ने बुला के, लोगों की नजर से तो मैं बहुत बड़ा आदमी, बड़ा सुखी दिखता हूं, लेकिन मैं अभागा हूं, आयुष नाश हो रही है, रथ में घूमता हूं, प्रजा मेरा जय जयकार करती, लेकिन मैं कौन हूं, अभी तक जाना नहीं। आखिर एक दिन तो मर जाएंगे, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। ये राज भवन लक्ष्मी क्या मेरे साथ आएंगे। कृपा करके मुझे अपने उद्धार का उपदेश दिया। तब मनु महाराज ने कहा, जो घर में भोजन मिले स्वास्थ्य का ख्याल करके खा लो, ये चाहिए ये चाहिए उस वासना को मत पूर्ति करो। जहां नींद आए वहां सो लो, जो धन मिल गया गया सो गया, जो मान अपमान हुआ, नित्य आत्म परमात्मा की प्राप्ति का अभ्यास करो, अंतर्मुख रहो, शास्त्र विचारो, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। फिर तुम जिस ईंट पे पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी। तुम वस्तु को छुओगे वो वस्तु प्रसाद हो जाएगी। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो भी धन्य आत्मा, पुण्य आत्मा, सुखी आत्मा होने लगेगी। ज्ञानी की दृष्टि से लोग सुखी आत्मा नहीं होते क्या? तुम ऐसे बन जाओगे। राजा इक्ष्वाकु लग गए और इक्ष्वाकु में रघु राजा और दिलीप राजा और दशरथ राजा और फिर राजा राम आए, उन्होंने भी साक्षात्कार कर लिया।
अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे है और मैं इनका हूं, और उनका नाश होने से दुखी होता है। ये नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता, असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा को जान, उसमें वाणी की गति नहीं है, पर शास्त्रों के उपदेश से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है, उसी से आत्माधिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही जितने कुछ अर्थ संज्ञा है वे सब आत्मा से सिद्ध होती है। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जाए। हे राजन, वह शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्राधिक तो लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जानते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है, वैसे ही आत्मा ही आत्मा को देखता है। वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने को आप देखता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है, और फिर उसकी भावना होती है। हे राजन, जीव को और कोई दुखदायी नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यक दर्शी दुखी होता है। सम्यक दर्शी को जगत दृष्टिगोचर होने पर भी दुखदायी नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है, वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदायी है। इससे आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे सब दुख नष्ट हो जावे। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है। तुझमें कोई कल्पना नहीं।